के दिनों में नमो कांड की चर्चा कर चुके हैं। नमो कांड का नाम सीधा सा है, नमो अरिहं कांडम, अनंतों को प्रणाम हो या अनंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धानम, सिद्धों को नमस्कार हो। नमो आयिनम, आचार्यों को नमस्कार हो। नमो वैख्यायानम, उपाध्यायों को नमस्कार हो। नमो लोए सर्व साहूनम, मेरा लोक में समस्त साधुजनों को नमस्कार हो। नमो लोए पद जो है वो सभी के साथ ऐड करने का है। जो लोए पद है, लोए सब, लोक में सब, ये अंश दीपक है नमोकार मंत्र में, जिसको कि सबके साथ लगाना चाहिए। जब अपन अर्थ निकालेंगे तो मेरा लोक के सभी अनंतों को नमस्कार, सिद्धों को इसी तरह लोक में, जैसे अपन ने अंत में कहा ना कि नमो लोए सब साहूनम, इसी तरह नमो लोए अहंकारम, अर्थ निकालेंगे तब ये निकालेंगे। और लगाया भर अपन ने अंत दीपक कहलाता है इस भाषा में, तो एक एक जगह लगा दिया तो सबके साथ सबके लिए हो गया। ये हो गया इसका सीधा अर्थ। और चत्तारी दंडक जो उसके साथ जोड़ा गया है कि लोक में अगर मंगल कोई है तो कौन है, तो चत्तारी मंगल, चार ही मंगल है, अनंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु मंगल है, साधु में आचार्य उपाध्याय और साधु तीनों आ गए, और केवली भगवान के द्वारा प्रणीत, केवली पंडितो धम्मो मंगलम, केवली भगवान के द्वारा प्रणीत धर्म ही मंगल है। यही चार लोक में उत्तम है, चत्तारी लोग उत्तम, अरिहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पंडितो धम्मो लोग उत्तम, ये चार ही लोक में उत्तम है। और यही चार जो है लोक में शरण लेने योग्य है, चत्तारी शरणम पवज्जामि, मैं चार की शरण लेता हूँ अपनी तरफ से, प्रवर्तयामि अर्थात दीक्षित होता हूँ मैं, इनकी शरण ग्रहण करता हूँ, इन्होंने मुझे नहीं बुलाया है, नहीं मैं अपनी स्वेच्छा से आया, इसलिए लिखा हुआ चत्तारी शरणम, अरहंते शरणम पवज्जामि, मैं अरहंत की शरण को स्वीकार करता हूँ, मैं सिद्धि की शरण को स्वीकार करता हूँ, मैं साधु की शरण को स्वीकार करता हूँ, मैं केवली भगवान के द्वारा प्रणीत धर्म की शरण को स्वीकार करता हूँ अपने, ये इसका अर्थ है। और इसको पढ़ने का क्रम जो है वो ये है, ये आर्य छंद में पढ़ा जा रहा है एक्चुअली, जैसे छंद पढ़ते हैं उसी तरह। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सर्व साहूनम, ये एक आर्य छंद, इस तरह नमोकार का एक उच्चारण, शुद्ध उच्चारण ये हो, ऐसे करके 9 बार जब उच्चारण किया जाता है तब वो एक कायोत्सर के 9 बार नमस्कार मंत्र, इस तरह ये की कोई उसमें कॉलेज का कोई नहीं, कहीं से भी कर लीजिएगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। अगर आप कर्मों की निद्रा के लिए करना चाहें तो कहीं से कर लें, आपको मंत्र सिद्ध करना हो तो अलग, उसके लिए निश्चित फॉलेक्स, निश्चित फिंगर, फिंगर फॉलेक्स दोनों मंत्र सिद्धि के लिए अलग अलग हो। लेकिन आपको कर्म निद्रा करना कहीं से शुरू कर लें, जहां से आपको करना हो, कोई नहीं तो अब यहां से शुरू कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उन्होंने कहा नहीं साहब ये वाली उंगली क्यों शामिल कर रहे हैं, ये तो तर्ज नहीं है, और इसको अलग कर दो, हम यहां से करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा कर लें। फिर उन्होंने कहा कि हाँ बढ़िया है, ओम बन जाता है, तो एक व्यक्ति के अंदर जब खड़े होंगे तो ओम उल्टा हो जाएगा, हमने तो कहा क्यों करो, आप तो जहां से हम जो बताएंगे उसमें कहीं ना कहीं तो मिस्टेक होगी, अब ऐसे करेंगे तब तो ओम सही बन जाएगा, उन्होंने कहा हम ऐसे हाथ करेंगे तो ओम उल्टा हो जाएगा खड़े होकर के, तो उसमें ये सिर्फ एक मीडिया है। वैसे अंगुली पर गिनना कायोत्सर्ग का दोष है, सिर्फ अंगुली पर गिनना या माला पे गिनना सब कायोत्सर्ग के दोष है। हम लोगों को 32 प्रकार के दोषों में आया है, कायोत्सर्ग का दोष है अगर आपने अंगुली की मदद ली है। सब शांति से बैठ के उच्चारण करिएगा और 9 बार हो जाए तो खत्म कर दीजिएगा, आपको भीतर ही भीतर गिनना पड़ेंगे कि 9 कब हो गया, ऐसे नहीं, हाँ भीतर ही भीतर 108 की माला फिरनी तो भीतर ही भीतर गिनिए, इसका आलम्बन मत लीजिए, जो जितना कमजोर है वो आलम्बन लेता, चाहे अंगुली का हो चाहे माला का हो चाहे किसी भी चीज का हो, बिना आलम्बन के होना चाहिए कायदे। खैर आप आलम्बन लीजिएगा तो आलम्बन की तरह लीजिएगा, इस चक्कर में पड़ पड़िए कि कहाँ से शुरू करें, है ना। इसलिए दूसरा पूजन के हेतु जो स्तुति है उसमें 40 कैसे पढ़ना चाहिए, ये पूजा के बारे में एक अलग से चैप्टर अपन पढ़ेंगे, पूजा की जो टर्मिनोलॉजी है वो अपन समझ लेंगे और पूजा करने की प्रोसीजर क्या है ये अपन समझ लेंगे, ये अलग एक दिन इसी पे करेंगे। रात्रि मंदिर में किस प्रकार दर्शन करना चाहिए आरती के संबंध में ये भी जो है उसी पूजा के दौरान समझेंगे। साध्वी और आरिका जी के ग्रेडेशन कैसे होते हैं, साध्वी जी श्वेतंबर में साध्वी बोलते हैं और दिगंबर अम्बय में उन्हीं को आरिका जी बोलते हैं, दोनों के मूल गुण अलग अलग है, आरिका और छुल्लिका ऐसे दो पद दिगंबरों में है कि जो छुल्लक एलक के बराबर व्रतों को लेती है 11 प्रतिमा को वो कहलाती है छुल्लिका जी, वो एक साड़ी का और एक ओढ़ने का दुपट्टा भी रखेंगी और थाली में भोजन करेंगी या कि कटोरे में भोजन करेंगी। ये छुल्ली का जी जैसे वो छुल्लक जी। फिर मुनि महाराज जी के समान जिनको 16 संस्कार किए जाते हैं और 28 मुर्गों उपचार से दिए जाते हैं, जो सिर्फ एक साठी का रखती हैं और हाथ में पानी पास में भोजन ग्रहण करती है, वो आरिका माता जी। इतना दोनों के बीच के रिलेशन है और कोई इसमें फर्क नहीं। ये अपन श्रवणाचार के अंतर्गत बढ़ चुके हैं, ठीक है। शुल्लक एलक मुनि उपाध्याय और आचार्य का क्रम क्या है? सबसे पहले कोई भी लेता है तो एक एक करके प्रतिमाएं लेता है, एक प्रतिमा से लेकर 10 प्रतिमा तक ले ली, फिर 11 प्रतिमा लेने वाला शुल्लक। और 11 प्रतिमा में अगर वो सिर्फ एक कॉपीन रखता है और पानी पात में भोजन करने का नियम करता है तो वही एलक होता है। तो पहले नंबर तो ब्रह्मचारी, फिर शुल्लक, फिर एलक, और एलक बनने के बाद फिर मुनि। और मुनि में जिसको वैशिष्ट प्राप्त होता है, जो अपने आचार्य के सम्मुख रह करके 12 वर्ष तक तपस्या करता है और विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को पढ़ता है, उसे फिर वे आचार्य उपाध्याय का पद देते हैं, जो अन्य मुनियों को पढ़ाता है। जो मुनियों को पढ़ाएंगे उपाध्याय। और फिर उसके बाद जब आचार्य अपना जीवन समाप्त होने की तरफ होता है, तब संलेखन ग्रहण करने से पहले अपने किसी योग्य पद शिष्य को अपना पद दे के जाते हैं और सारा संघ उन्हें अपना आचार्य स्वीकार कर लेता है, तब फिर वो आचार्य पद की दीक्षा अलग होती है। ये इस तरह से ग्रेडेशन है। तो पहले ब्रह्मचारी, फिर छुल्लक, फिर एलक, फिर मुनि महाराज जी, फिर उपाध्याय जी, फिर आचार्य। इस तरह से
आचार्य पद की दीक्षा होती है। हाँ, तो आचार्य देते हैं,
आचार्य देते हैं अपना पद, कोई ऐसे नहीं देता कि कोई और आकर के।
तो वो दीक्षा भी देते,
दीक्षा भी वही करेगा। एक संघ में कई उपाध्याय मुनियों को पढ़ाने वाले, उसमें भी ग्रेडेशन पहले होते थे, अब तो होते नहीं। उच्चारण आचार्य, सिर्फ उच्चारण कराने वाले आचार्य, प्रज्ञा आचार्य। प्रज्ञा आचार्य अच्छा नाम लगता है, लेकिन प्रज्ञा आचार्य का काम क्या है? वो सिर्फ साधु उनसे पूछ के लघुशंका जाएंगे और शौच जाएंगे, कहाँ जाना है वो बताएंगे। वो प्रज्ञा आचार्य है, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, वो जानते हैं कि यहाँ जीवराशि कम होगी, आप यहाँ जाइए। वो सबसे पहले जाकर के पूरे संघ के लिए ये पता कर लेंगे कि यहाँ लघुशंका जाना है और यहाँ पर निष्ठीपन करना है, यहाँ पर इनको सुबह से चर्या के लिए जाना है। एक एक आचार्य होते हैं जो देश काल की स्थिति को जानते हैं, उपाध्याय होते हैं, देश काल की स्थिति को जानते हैं। वो सिर्फ ये बताएंगे, उनके पास मैप रहेगा कहाँ से पूरा संघ विहार करेगा, कहाँ श्रावकों के घर हैं, कहाँ कितने घर हैं, कहाँ से जाना है, कहाँ ठीक ठीक साधना हो सकेगी, उनके पास सिर्फ यही है। ऐसे कई ग्रेडेशन, अब तो सब खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं रह गया। ये अब तो सीधा आचार्य पद लेने की होड़ है, अब ऐसा नहीं है कि छोटा छोटा कुछ ले ले गए अपन और अपना जितना भी है अपन को इसके तो मतलब नहीं। मंदिर में भगवान के आगे कुछ अंक लिखे हुए होते हैं, यानी उनका क्या महत्व है, श्री जी की सेवा, ये सब जो है अपन पूजा के अंतर्गत, यानी आपका पूरा पूजा का चैप्टर है ये। भगवान के दर्शन करते हैं मंदिर में महाराज जी, या कोई अनरिस्पेक्टेबल आ जाए तो मंदिर के परिसर में नमस्कार करना, जय जयंत करना आवश्यक नहीं। मुनि महाराज जी प्रणाम कर रहे हैं जिस समय भगवान को, उस समय उन्हें प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। लोग जो है हम उनको क्या करें, आप बताइए। भगवान के सामने सब सब सेवक हैं, हम उस समय बड़े नहीं हैं। हम वहीं पर मंदिर में स्वस्थ बैठे हों, स्वाध्याय कर रहे हों, जगह नहीं है, वहीं मंदिर बैठे, तब फिर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करके फिर मुनि महाराज को प्रणाम करके निकल जाए। और रास्ते में मुनि महाराज जी मंदिर जा रहे हों और आप मंदिर से निकल रहे हों तो एकदम जो है हड़बड़ा जाए, आपके नमस्ते महाराज, हाँ कछु नहीं, आप भी दर्शन करने आ रहे हैं, हम भी आए, इस समय सब बराबर है, इस समय कोई बड़े छोटे नहीं, भगवान के मंदिर में सब बराबर है। देव वहां सबसे बड़े हैं, देव के सामने किसी दूसरे का आदर करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ वहीं पर जगह नहीं, वहीं बैठे हैं तो फिर पहले देव का दर्शन, फिर उसके बाद में इसमें वो नहीं लगेगा गुरु गोविंद खड़े काके मंदिर है ये, मंदिर में तो भगवान का वर्चस्व है। वहां पर तीर्थंकर भगवान जहाँ बैठे रहते, वहां पर सैकड़ों केवली भगवान बैठे रहते, कोई नहीं पूछता, जो कि केवली भगवान है और तीर्थंकर भी केवली, लेकिन मोनोपल नहीं चलेगी, तीर्थंकर है ये सब कुछ। उस समय किसी से कोई मतलब इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, उनके सामने रिस्पेक्ट, वही सबसे बड़े हैं। इसलिए देव के सामने अगर दर्शन करते हुए मुनि महाराज जी इत्यादि हो या कोई और रिस्पेक्टेबल दर्शन मिल जाए तो कुछ नहीं कहेंगे उनसे, अपने जाकर के फिर बाहर आते आके जय जयंत कर लेंगे, नमस्ते कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसा, लेकिन कोई भी हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, आपको आचार्य के दर्शन हुए। मैंने बताया था समझ कि जिस दिन आप सेवा में आए उस दिन आपकी दीक्षा हुई, उसी दिन थोड़ा सा अनुभव हमें बताइएगा, यदि दर्शन ठीक हो तो बताइएगा। मुझे आचार्य के दर्शन तो हो गए थे बहुत पहले सन 76 में, और उसी समय मेरे मन में युक्ति आ गई थी, पर मैं जब दूसरी बार उनके पास पहुँचा हूँ तो फिर उसी दिन दीक्षा मुझे मिल गई। मैं सुबह दर्शन किया उनका और निवेदन किया, उसी दिन दीक्षा समारोह होना था और लोगों की दीक्षा होना थी, तो मुझे भी उन्होंने कृपा मेरे ऊपर करी कि लोगे क्या, मैंने कहा आपकी जैसी कृपा, मैं तो सिर्फ अकेला आपसे निवेदन करने आया था कि अपने पास रख लें, मैं तो सोच ही नहीं सकता कि आप मुझे इतना दे देंगे। तो फिर सारे साधु जितने भी थे, छह पीछियां थी उस समय, पांच छह संघ में, सबका एक एक ये निकाला गया, ये निकाल के एक एक एक, एक और सबकी फिर मेरी पीछी बनी। और डंडी वंडी नहीं थी, ऐसी बांध दी गई। एक कमांडर टूटा फूटा रिजेक्टेड था, वो जुटाया गया, हाँ वो रिजेक्टेड कमांडर। और उस समय पांच बना थी तो पांच थे, और छठवा कहाँ से आ जाएगा, लेकिन आचार्य श्री की तैयारी, तो फौरन जो है कमांडर भी आ गया, पीछे भी आ गई, वहीं के वहीं जो है दीक्षा हो गई। पहले तो ये कहा कि निवेदन करो, मुनि दीक्षा का निवेदन करना पड़ता, फिर मुनि दीक्षा का निवेदन किया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं अभी शक्ति नहीं है, सुलभ दीक्षा देंगे, हो गया था। वहीं सुबह 8:30 बजे पहुंचा था मैं, 2 बजे दीक्षा हो गई। तो ये इतना ही है और कोई विशेष, पर इतना जरूर है कि मुझे उस दिन के बाद से कभी ये नहीं लगा कि मैं कितने बार खाता था, या मैं दूसरी बार भी खाता था, या शाम को खाता था। मुझे कभी आज तक जो है मुझे ये फील नहीं हुआ, मुझे सिर्फ ये लगता कि मैं तो ऐसे ही रहता था, पहले भी ऐसे ही रहता था, मुझे कोई उसमें एक्स्ट्रा आई वो नहीं हुई तकरीबन। हाँ मतलब चेंज, मतलब मुझे ये नहीं लगा कि कोई अडॉप्ट की गई है प्रोसीजर, मुझे ये सब करना है, अब मुझे बताना पड़ा हो कि ये करना है या ऐसा। बस अकेला आचार्य ने मुझे सिखाया था लेटना, क्योंकि चटाई मिलती है और चटाई को कैसे ओढ़ना, तो मैं चटाई को ऐसे ही ओढ़ लिया, तो इधर से उधर सबसे हवा जा रही थी, तो फिर उन्होंने जो है लेट के बताया, बस इतना मुझे याद है कि जब चटाई को बोले देखो ऐसे बिछाना, धीरे से पीछे लगा के फिर ऐसे ऐसे उसको लेट जाना, उन्होंने खुद लेट के बताया कैसे लेट जाना ठीक, क्योंकि एक दो दिन उन्हें देखा इनसे ओढ़ते ही नहीं बनती, चटाई डली रहती है वो, और ठंड बहुत थी उन दिनों, ठंड की जनवरी का दिन था। बस इतना ही है, मैंने मुझे अभी भी लगता है कि वो एक बहुत स्पेशल सी चीज है कि अगर आप पूरी तरह से आपको ज्ञान है और डिवोट हुए हैं, तो फिर पता नहीं लगता है त्याग की महिमा है, कि फिर दूसरे दिन अंतराय, तीसरे दिन अंतराय, 3 दिन के बाद जाकर के ठीक हुआ, जबकि मैंने अपनी लाइफ में कभी उपास नहीं किया, ना कभी एकासन किया, और फिर सीधा सीधा उसी दिन उपास। अच्छा, और तारीख की बात यह कि घर में सब लोग लगे हुए थे कि दूध दूध पी के जाओ, नैना के जा रहे, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, अकेला पेस्ट किया था और चले गए। तो आचार्य जी ने पहले ही पूछा कि कुछ खाया तो नहीं यार, अगर खा लिया होता तो दीक्षा नहीं होती। उस दिन मैंने कुछ खाया नहीं, और फौरन जो है उन्होंने कहा कि हाँ ले लो दीक्षा, अकेले पेस्ट किया, पहले से अब क्या कहें उसको, उनकी कृपा मानता हूँ मैं और कुछ भी नहीं मानता हूँ।
दीक्षा तो आशीर्वाद रूप होता होगा स्नान करने
का, वो तो जब हाथ रखते हैं बाएं हाथ से स्पर्श किया जाता है, तो वो तो जिसको ये लोग शक्तिपात मानते हैं, मैं तो वही चीज मानता हूँ कि आचार्य का आशीर्वाद मिलता है जीवन पर्यंत के लिए, फिर टिक नहीं सकता। अब कर्म का उदय आ जाए तो कोई टिक जाए तो है, ये तो फिर उसके कर्म का उदय है। बाकी कुंभकार घड़ा बनाता है तो चोखा ही बनाता है, अब एक आध छूटा निकल जाए तो कोई
नहीं।
वो इस तरह की घटना हुई थी, मुझे अभी भी मैं फिर याद करता हूँ कि क्या हुआ था, कैसा फील होता था, कुछ भी याद नहीं आता उस समय। उसके बाद से सब जैसे सब खत्म हो गया, कुछ पुराना वाला सब नाम बदल गया तो सब बदल गया। हाँ ऐसे जैसे हो गया कि नाम बदल गया तो सब बदल गया।
उत्तर पुराण में लिखा था कि पांच छह भाग पहले से ये तैयारियां चलती हैं, सब
तब व्यक्ति प्राप्त कर पाता है, ये तो है। तो आचार्य श्री की कृपा से जो है कि मिल गया, नहीं तो कहीं के कहीं होते किसी टेबल पे बैठे और नौकरी कर रहे होते और इससे ज्यादा क्या करते, 5,000 रुपया महीने कमाते और क्या कमाते, इससे ज्यादा क्या, 10,000 मिल जाते, 20,000 मिल जाते और इससे ज्यादा क्या मिलता है एक इंजीनियर की हैसियत से, उसमें मजा नहीं। एक दिन जब आपने विधि वगैरह कैसे लगती है उसके बारे में बताया था, आपने कहा था कि आपने पास्ट 15 ईयर के अनुभव ब्रीफ में बताएंगे, थोड़ा सा उस बारे में बताइएगा, ये मैं फिर कभी बैठूंगा, है ना, इसके बारे में भूल गया पिछले बार ये बताना था। पर वो श्रावक का कल बहुत अच्छा हो गया,
मुझे अब हो गया
है ना, श्रावक के बारे में अपन पॉइंट्स लिख लेंगे अभी आज। कुछ श्रावक सीरीज में रविवार के फास्ट करते हैं, कई बार हेल्थ प्रॉब्लम से उसमें व्यवधान आ जाता है, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अपने हेल्थ के हिसाब से करना चाहिए, इसमें कोई चीज एक ले लेने से उनका काम चल जाता है, तो फास्ट के दिन कोई एक चीज लेके वैसा कर लो, फिर जब अपन स्वस्थ हो तो फिर पूरा निर्जल उपवास कर लो।
वो उसको उस पर्टिकुलर डे को छोड़ने एक बार हुआ मेरे
साथ, तो उस दिन कुछ थोड़ा सा ले लें और फिर अगले उसमें फास्ट करें। क्या करेंगे, परफेक्ट नहीं माना जाएगा, पर फिर भी एक्सेप्शन तो संभव। मैं तुमको ये बता देना कि कोई 10वीं पढ़ ले तो फिर ड्रॉप ले ले एक साल का, तो पहली से पढ़ना पड़ेगा कि 11वीं।
सबसे बढ़िया है।
मैंने आठ साल तक जिसने व्रत कर लिए, एक आध साल उससे चूक हो गई तो ठीक है, वो ड्रॉप हो गया, उसने जैसे जैसे टूटा फूटा कर लिया, अब आठ साल और कर लेगा अगले उसमें, लेकिन अब पूरे 16 साल करो ऐसा नहीं। आज अपन ये लिख लें, सबसे पहला पॉइंट कल अपन ने सीखा था कि इच्छाओं पर नियंत्रण, ठीक है ना, फिर विवाद को टाला जाए, दूसरा पॉइंट ध्यान में रखा जाए कि विवाद को टाला जाए, तीसरा समायोजन का तरीका अपनाया जाए, एडजस्टमेंट, फिर चौथा वैचारिक मतभेद तो हो पर मन में कलह का ना हो, ये जरूरी है, यानी सभी के विचारों का सम्मान, फिर आत्म नियंत्रण, फिर धैर्य सहनशीलता पेशेंस, फिर कर्म सिद्धांत का ध्यान आ जाए कि सबका स्वभाव अपने कर्मों के अनुरूप है और सबकी अपनी सुख दुख की स्थिति अपने कर्मों के अनुसार है, हम किसी में फेर बदल करने का अहंकार काहे को करें, हमारे अनुसार सब दुनिया चले ये अच्छा नहीं है, दुनिया तो अपने अनुसार चलती है। अच्छा लिख ली मैं, अच्छा मैं तो बोलता जा रहा था, लिख ली तरीका अपना, हाउ टू एडजस्ट, आपको इंग्लिश में ज्यादा हिंदी पढ़ता है, हिंदी में वैचारिक मतभेद, लेकिन मन को कलुषता से बचाएं, मन खराब नहीं करें, किसी के विचार से अपना मन क्यों खराब करना, किसी के विचार हमसे नहीं मिलते तो नहीं मिलते, ठीक है, आत्मनियंत्रण, फिर धैर्य सहनशीलता पेशेंस, फिर कर्म सिद्धांत, सभी को अपना फल भोगना पड़ता है, फिर खुलापन हो, स्वतंत्रता हो पर आत्मनियंत्रण, खुलापन वही संभव है जहां के आत्मनियंत्रण है, नहीं तो खुली छूट अपने मन को दे दी तो भ्रष्ट हो जाएंगे आप, घर का कोई भी मेंबर जो है खुलापन तो रखे लेकिन आत्मनियंत्रित हो तो खुलापन ठीक है, 12 बजे रात को लौट रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूछा जाएगा कि कहां हो क्या रहे, या तो आपका आत्मनियंत्रण होना चाहिए तब तो वेंटी मेंटेन होगी, फिर उसके बाद पूर्वाग्रह से मुक्त, किसी के बारे में, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट हो गया आज सुबह, लोगों ने उन्होंने कहा कि ये बड़ा पॉइंट है, पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं हो पाते हम, किसी के बारे में कोई धारणा मेंबर फैमिली मेंबर के बारे में बना लेते हैं बस, फिर वैसे ही सोचते रहते जिंदगी भर उसके साथ वैसे ही करते हैं, तो पूर्वाग्रह से मुक्त ये हो गया बस। फिर कुछ इसमें लिखना था कि दान पूजा शील हो, है ना, ये चार शावक के घर जी, इतना तो शावक करे दान पूजा, और दान पूजा के भी अपन ने अलग अर्थ समझे थे कि दान तो हम रोज दे सकते हैं, भाव तो बना नहीं सकते दान देने का, और हम देखें कि हमने आज किसी को क्या दिया, ज्ञान दिया, आचरण दिया, श्रद्धा दी, श्रद्धा ही तो देने की चीज है, और इसके अलावा कोई चीज अपने दिया, मैंने ये भी हमने दान के अंतर्गत कहा था या त्याग के अंतर्गत कहा था, ये कल एक अपन ने अच्छा पॉइंट पढ़ लिया था कि हम अपने खाने पीने की चीज इसलिए कम कर लेंगे ताकि दूसरे को भी, ये जो है छोटी प्रोसेस में ये भी त्याग हो गया, माँ तो ऐसा हमेशा करती है वैसे मेरे ख्याल, उसके लिए नहीं बचता बाद में, वो सबको जिमा देती है, लेकिन उसी समय ध्यान आ जाए उसको कि मैं त्याग त्याग करना है मुझे, ये तो एक डेली रूटीन हो गया, लेकिन उसी समय उसको धार्मिक दृष्टि आ जाए कि नहीं मैं सबके लिए इस दृष्टि से कि मुझे त्याग करना, आज मेरा इस चीज का त्याग है, ये चीज कम है इसलिए पहले से सोच लिया, नहीं बची सो अब फिर का पहले ही सोच लिया ना ये बचेगी नहीं, मैं इसका त्याग कर दूंगा और मैं सबके लिए खिलाऊंगा इसके लिए, इस तरह दान पूजा शील और उपवास, ये इसमें भी दान दो तरह के, एक लौकिक उन्हीं में लौकिक अलौकिक, लौकिक दान में जो है संपत्ति कन्यादान और करुणा दान, ये लौकिक दान माने, संपत्ति संपत्ति मतलब अपने सामान को दे देना, अपना अपने बेटे को अपनी पूरी संपत्ति दे देना, ये संपत्ति, या कि जिससे जिसको कन्यादान किया है उसे अपने सामान बना लिया तो उसे अपने अपना व्यवहार शुरू कर देना, ये संपत्ति सम भी बोलते हैं ना वही है, कन्यादान और करुणादान, ये अपने यहाँ पर तीन लौकिक दान है, पारलौकिक दान या अलौकिक दान है आहार औषध अभय और उपकरण, और ये पात्रों को दिए जाते हैं, उत्तम पात्र है रत्नत्रय को धारण करने वाला साधु, अच्छा पात्र
आहार
दान में लिखिए लौकिक लौकिक में संपत्ति कन्या करुणा, फिर आहार औषध अभय उपकरण, आहार औषध अभय, अभय मतलब अभय का अपन ये समझते हैं कि किसी को मकान बना के दे दिया कमरा दे दिया, अरे नहीं बाजू में कोई बैठा है तो उससे हम कह सकें आप निश्चिंत रहिए मेरे से बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा मेरे से आपको कोई परेशानी होगी, अपने बाजू वाले से कह सकें पड़ोसी से कि आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए आप चले जाइए कहीं भी अपना घर छोड़ के मैं आप समझ रहे अभय दान,
तो ये उपकरण दान, फिर चौथा है उपकरण, इसी को ज्ञान दान भी बोलते हैं। ज्ञान को उपकरण देना या फिर पीछे कमंडल देना, ये भी जो है उसी में शामिल हो जाएगा, उपकरण दान में व्यापकता हो गई। तो ज्ञान ज्ञान दान के बैठे लिखने ज्ञान दान, ये चार प्रकार का। लेकिन पात्र पात्र तीन पात्र होंगे, उत्तम मध्यम जघन। इसमें पात्र का विचार करना पड़ेगा। लौकिक दान में पात्र पात्र का विचार नहीं करना, अलौकिक दान में पात्र पात्र का विचार करेंगे। पात्र कौन है? तो उत्तम पात्र है महाव्रती साधु, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त। फिर मध्यम
साधु,
मध्यम में क्या आएगा? एलक शुल्लक आरिका, ऐसे लिख लीजिएगा। मतलब व्रती, आंशिक रूप से व्रती जो है वो मध्यम में आएगा। पंचम गुण स्थान है, उपचार से महाव्रत है। समंत पत्र स्वामी ने उपकरण ही लिया शास्त्र दान, तो शास्त्र दान से व्यापक हो गया उपकरण। संयम का उपकरण, ज्ञान का उपकरण और सुचिता का उपकरण, व्यापक ये हो गया। फिर क्या लिख दिया? उत्तम मध्यम, ये मध्यम हो गया। फिर जघन्य में लिख लीजिएगा, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखने वाला श्रावक, ये जघन्य है। जो सच्चे देवगुरु शास्त्र पे श्रद्धा रखता है पर व्रत वगैरह नहीं लिया उसने, नहीं अवृत्ति है, अवृत सम्यक दृष्टि जिसको पर बोलेंगे, ये जघन्य पात्र है, इसको भी दान दिया जाए। ये चारों प्रकार का दान तीन होना चाहिए, तब तो वो श्रावक सब मध्यम में आएंगे। पहली प्रतिमा से लेके अच्छा, फिर लिखिएगा शक कर्म, ये भी अपन को लिखना थे। देव
पूजा,
गुरु पास्ती, गुरु के निकट बैठना, शास्त्र स्वाध्याय। स्वाध्याय में अपन लिख लें कि पांच प्रकार से करेंगे स्वाध्याय। वाचना ब्रैकेट में पढ़ना, है ना, सीधा सीधा वाचना मतलब पढ़ना, या कि गुरु मुख से सुनना, दोनों वाचना कहलाते हैं, सुनना पढ़ना ये। फिर उसके बाद प्रश्ना, प्रश्न मतलब पूछना सीधा सीधा। तीसरा अनुपेक्षा, चिंतन करना ग्रंथ का, अनुपेक्षा मतलब चिंतन। आमनाय, याद रखना, याद कर लेना, रखना जिसको मैं बोलते ना भोग लिया, आमनाय इतना। आमनाय याद बहुत कम होती है, पहले शुरू में हम लोगों को आमनाय 415 पूरी गाथाएं याद करो समय सारणी की कंठस्थ, ताकि थान ली बैठो तो पूरा रिपीट करो उनके अर्थ सीखो अपने मन ही मन में। पूरा रत्न शाप का चार, पूरा द्रव संग्रह शुरू शुरू में, ये इस तरह ये आमनाय नाम का स्वाध्याय है। फिर जिस जो व्यक्ति आमनाय करेगा वही धर्मोपदेश दे पाएगा, नहीं तो भूल जाएगा, क्या विषय ही नहीं उसके पास तो क्या करेगा। फिर उसके बाद धर्मोपदेश, धर्मोपदेश मतलब ये तो सीधी सीधी सी प्रक्रिया, इसमें तो कोई हिंदी मैट नहीं, इसको मैंने ऐसा मैच लिखा था, पढ़ना पूछना सोचना, पढ़ना पूछना सोचना याद रखना और पढ़ाना, धर्मोपदेश मतलब दूसरे को भी देना। ये स्वाध्याय के ढंग हैं, इसमें से कोई भी अपनाया जा सकता है जिसको जो जिस दिन करना हो। फिर संयम, संयम में आ जाएगा आत्मनियंत्रण, इंद्रिय विषयों से विरक्त होना, ये सब संयम आ जाएगा, जितना भी आप कर सकें श्रावक जितना इंद्रिय विषयों से विरक्त, कषाय को जीतना ये भी संयम है। आज हम क्रोध नहीं करेंगे, आज हम मान नहीं करेंगे, जाएंगे बहुत बड़ी सभा में लेकिन पीछे बैठ जाएंगे, कोई मुझे आगे बुलाए माला पहनाए, इस तरह की कोई आता नहीं। पाप पर नियंत्रण, पांचों पापों में से हम आज नियंत्रण करेंगे। और परिग्रह पर नियंत्रण, परिग्रह का परिमाण, ये भी सब जो है संयम में आ गया, परिग्रह की सीमा। क्या चीज? परिग्रह नियंत्रण भी होते हैं, मरियन परिग्रह होते हैं, इसलिए हमने उसको अलग से लिखवा दिया कि पापों को क्या करेंगे परिग्रह। ये हो गया, तप का मतलब होता है संयम, तप और त्याग, ये था कितने हो गए, संयम तप हो गया, चार हो गए। अब संयम तप, ये भी श्रावक रोज करेगा। तप तप मतलब इच्छाओं का निरोध, ये अपन पहले कह चुके हैं, एक गृहस्थ के लिए इच्छाओं का निरोध तो करना ही पड़ेगा, वरना गृहस्थी नहीं चलेगी, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं तो झगड़ा खड़ा होगा। तो तपस्या, तप और त्याग, त्याग मतलब त्याग के अंत में दान आएगा, श्रावक दान करेगा। तो अगर देखें गौर से तो ये जो छह कर्म हैं श्रावक के वो इनमें चार में आ जाते हैं, दान पूजा शील उपवास इसी में सब आ गए, चाहे छह कर्म करो चाहे ये करो। किसी किसी आचार्य भगवंत ने तो सिर्फ दो ही बताए श्रावक के लिए, दो ही काम, दान और पूजा। लेकिन इनका बड़ा व्यापक अर्थ है, पूजा में नियम शामिल करिएगा, पूजा में वो कहते हैं प्रतिक्रमण भी शामिल, पूजा में स्वाध्याय भी शामिल, आप सिद्ध भगवान की पूजा करो उसमें सिद्धों के सारे गुणों का वर्णन आपका स्वाध्याय हो जाएगा। हाँ यही नियम सार में वही लिखा हुआ इस तरह ये कल पढ़े थे, बस कितना ही पढ़ा था जी। हाँ थोड़ा सा जो है और कुछ पूछना है इसमें से या कि श्रावकाचार क्लोज करें?
105 और 108
है ये, पहले मेरी क्लास का काम पूरा हो नहीं तो फिर वो हो नहीं पाएगा। आज प्रश्नोत्तर ड्रॉ इसी में से हाँ।
जो परिग्रह उपलब्ध नहीं है
हाँ।
उसका त्याग क्या माना?
हाँ जो नहीं इच्छा का निरोध, इसलिए उसका नाम रखा है इच्छा परिमाण व्रत, परिग्रह परिमाण ना करके इच्छा परिमाण। जैसे कि हमारे पास 1,00,000 रुपया है लेकिन हमारी इच्छा है कि बहुत सारा हो जाए, 2 करोड़ हो जाए, नहीं हमने लिमिट कर ली 1 करोड़ से ज्यादा नहीं रखा। हमारी इच्छा वापस है तो 1,00,000 लेकिन सीमा रखी 1 करोड़ की, इसलिए रखी क्योंकि इच्छा मेरी 1 करोड़ से ज्यादा की हो सकती है, तो इच्छा का लिमिट कर लिया। अभी है मेरे पास कुछ भी नहीं, इच्छा का निरोध भी किया जाता है और फिर इच्छा निरोध के बाद फिर परिग्रह का भी निरोध कि भाई 1,00,000 रुपए की सीमा रख लो, 1,00,000 से ज्यादा होंगे तब तो डोनेशन दे पाओगे, नहीं तो 1 करोड़ रुपये जिंदगी भर नहीं हो गए 1 करोड़ रुपये।
महाराज जी जैसे बासमती चावल सबसे अच्छा होता है, बासमती के अलावा सब चावलों का त्याग
तब जिसको कभी खा नहीं हाँ क्या कह रहा है मुझे 100 प्रकार की बनाना ठीक है 100 प्रकार की बनाने
क्या है
क्यों नहीं कि ये नहीं चलाएगा किसी भी कितने प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि नहीं प्लीज आप लोग आपस में ये इसको बिल्कुल क्लास है, ये क्लास में आप कैसे बैठते हैं, आपने नहीं पढ़ा पहली दूसरी क्लास में, भूल गए आप बड़े हो गए तो नहीं। तो जैसे 10 लाख प्रकार की वनस्पति है, हमको उपयोग में आती हैं 60-70-100 आएंगी, हमने लिमिट कर ली। अगर हम लिमिट नहीं करेंगे तो हमको 10 लाख वनस्पतियों के खाने का पूरा पाप लगेगा, हमने भले ही नहीं खाई, रात्रि में भोजन नहीं करते लेकिन अगर आप संकल्पित नहीं है कि रात्रि भोजन का त्याग है तो आपको उसका पूरा पाप लगेगा, तर्जन भरी आप खाओ या ना खाओ। तो ये निष्क्रिय पाप कहलाता है, एक सक्रिय पाप कहलाता है, एक निष्क्रिय पाप उसमें ये शामिल हो गए, इसलिए लिमिटेशन करना चाहिए। नहीं लेंगे तो देखो महाव्रत लिखा है कि जो अपनी सीमा से बाहर पाप नहीं करता सूक्ष्म पाप वो महाव्रती है, इस तरह लिखा। ये हो गया, आज जो है शलाका पुरुष के बारे में थोड़ी सी शुरुआत करनी है, शलाका पुरुष और महापुरुष कौन कौन होते हैं उनके बारे में हमें समझ लेना है और उनका अपना मूल माने उनके क्वालिटी क्या होती है। शलाका पुरुष विशिष्ट पुण्यवान, उंगलियों पर गिनने योग, शलाका गिनते पहले चलती थी, दूध वाला आया एक पाव लिया है ऐसा लगा दिया, आधा किलो लिया शलाका वाला, ये शलाका कहते तो इस तरह चलता था माने गिनती के बहुत लोग वो शलाका पुरुष कहलाएंगे। विशिष्ट पुण्यात्मा पुरुष जिसमें आते हैं 63 हैं इनकी संख्या टोटल, शलाका पुरुष 63 है। पहले अपन पढ़ लें या कि लिखते चले जाएं? नहीं तो आप लिखते जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। शलाका पुरुष जो है विशिष्ट पुरुष कहलाते, पुण्यात्मा पुरुष कहलाते, और महापुरुष भी विशिष्ट और पुण्यात्मा पुरुष कहलाते हैं। शलाका पुरुष में सवाल और महापुरुष में सिर्फ इतना अंतर है कि शलाका पुरुष जो है आपके एक निश्चित सीमा में है, हालांकि ऐसा भेद नहीं कर पाएंगे क्योंकि महापुरुष और शलाका पुरुष दोनों में ही सीमा है, दोनों की सीमा पर ये दोनों टर्म यूज की गई हैं कि महापुरुष और शलाका पुरुष, लेकिन इनकी कहीं कोई डेफिनेशन इस तरह से दी नहीं है। उंगलियों पर गिने जाने वाले विशिष्ट पुरुष जो है वो शलाका पुरुष और वही जो है महापुरुष की परिभाषा बनेगी। दोनों में साम्य भी है, 63 शलाका पुरुष महापुरुष भी है और महापुरुष और भी है, लेकिन शलाका पुरुष और निश्चित सीमा में। तीर्थंकर 63 सदा का पुरुष में 24 कीर्तन कराएंगे, 12 चक्रवर्ती होंगे, 9 बलदेव, 9 वासुदेव या कि जिनको नारायण बोलते हैं, और 9 प्रति नारायण, रावण इत्यादि जैसे ये प्रति नारायण, इस तरह
नारायण
ये नहीं, ये शलाका पुरुष नहीं, शलाका पुरुष में 24 कीर्तनकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलभद्र, ये आएंगे शलाका पुरुष 63। अब इसमें जुड़ जाएंगे और इतने 63 तो नहीं, महापुरुष बनाना हो तो फिर हमें 48 माता पिता जोड़ना पड़ेंगे। हर एक तीर्थंकर के माता पिता भी महापुरुष हैं, क्योंकि उनका भी 2 या 3 भाव में मोक्ष हो जाता है। ये सब जितने भी शलाका पुरुष और महापुरुष हैं, शलाका पुरुष तो कई तद्भव मोक्षगामी होते हैं, लेकिन महापुरुष 2 या 3 भाव में मोक्ष चले जाते हैं, ये ध्यान रखें।
तो शलाका पुरुष तो महापुरुष होंगे ही, महापुरुष जो है वो
शलाका पुरुष नहीं हो सकते सब। ये कामदेव 24 होते हैं, ये महापुरुष हैं कामदेव। रुद्र 11 होते हैं, नारद 9 होते हैं और कुलकर 14। इस तरह से जो है ये 169 महापुरुष हैं और 63 शलाका पुरुष हैं। आज अपन जो है तीर्थंकर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें और फिर उसके बाद लिखें। इतने ही महापुरुष माने जाएंगे और इतने ही शलाका पुरुष माने जाएंगे, इसमें कहीं कोई और चेंज नहीं, या महापुरुष नहीं माने
नहीं।
मैं थोड़ा सा और इसके बारे में मैं खोजूंगा कि कहीं कोई बढ़िया परिभाषा मिल जाए, फिर लिखवा दूंगा। तीर्थंकर जिनके 5 कल्याणक होते हैं, जो अपने पूर्व भाव में प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारण भावना के साथ में किसी केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में तपस्या करते हैं, भावना भाते हैं, वे तीर्थंकर बनते हैं। तीर्थंकर बनने के लिए पूर्व जीवन की साधना आवश्यक है। एक तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति होती है, अपन पढ़ चुके 93 कर्म प्रकृति में तीर्थंकर नाम कर्म, वो कैसे बनेगा? तो कहते हर एक को नहीं बने, सम्यक दृष्टि होगा, दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाएं भाएगा, प्राणी मात्र के प्रति कल्याण की भावना भाना पड़ेगी, और ऐसे ही घर बैठे बैठे नहीं, केवली शुद्ध केवली के पादमूल में बैठना पड़ेगा, तब ये भावना फलित होगी और उस व्यक्ति को तीर्थंकर नाम कर्म बन जाएगा, फिर आगामी जीवन में वो तीर्थंकर की हैसियत से पैदा होगा। तीर्थंकर की प्रकृति जब कोई बांधता है तो उसके पहले अगर उसने नरक आयु बांध ली है तो उसे नरक जाना पड़ेगा, तब वो तीर्थंकर नरक से आकर के तीर्थंकर होंगे, अन्यथा देवायु तीर्थंकर प्रकृति बांध ली है और सम्यक दर्शन के साथ और आयु नहीं बांधी तो देवायु ही बनेगी और देव से होकर के यहाँ पर आएंगे। तो दो ही गतियां हैं जिनसे कि तीर्थंकर आते हैं, नरक गति से आया, देव गति से ही आते हैं और किसी गति से नहीं आते।
तीर्थंकर गति बंद हो जाएगा तो उसके अगली ही गति में मतलब तीर्थंकर बनेगा, हो जाता तो नहीं, बीच में कुछ ऐसा।
अब दूसरा बताता हूँ, ये भरत क्षेत्र के लिए नियम हो गया, भरत क्षेत्र में इसी तरह की तीर्थंकरों की प्रकृति चलेगी, लेकिन विदेह क्षेत्र में तीर्थंकरों की व्यवस्था अलग है। वहां पर क्योंकि केवली शुद्ध केवली का पादमूल हमेशा मिलता है, इसलिए कोई भी पुण्यात्मा जीव पैदा हो गया, गर्भ कल्याणक उसका नहीं मनाया गया, जन्म कल्याणक नहीं मनाया गया उसका, दीक्षा कल्याणक भी नहीं बनाया गया मान लो उसका, और उसने दीक्षा ले ली और फिर केवली शुद्ध केवली की पादमूल में जाके मुनि अवस्था में और वहीं के वहीं तीर्थंकर प्रकृति बांधी, और जब केवल ज्ञान हुआ तो वो केवल ज्ञान कल्याणक की तरह हुआ, तीर्थंकर प्रकृति उसी भाव में उदय में आ गई, तीर्थंकर की हैसियत से केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष हो गया उनका, निर्वाण कल्याणक। 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर हो सकते हैं और कोई कोई तीर्थंकर 3 कल्याणक वाले भी होते हैं, जिसमें कि उनका जन्म गर्भ और जन्म कल्याणक नहीं होता, लेकिन गृहस्थ अवस्था में ही तीर्थंकर प्रकृति गृहस्थ भी बांध सकता है, ये ध्यान रखिएगा, सम्यक दृष्टि होना चाहिए, सम्यक दृष्टि गृहस्थ से लेकर के 7वें गुण स्थान के 6ठे 7वें गुण स्थान के मुनि महाराज जी, ये इतने लोग जो है तीर्थंकर प्रकृति, देशव्रति, महाव्रति और अविरत सम्यक दृष्टि, सभी तीर्थंकर प्रकृति, लेकिन केवली शुद्ध केवली के पास में। तो कोई ने ऐसा किया कि गर्भ जन्म तो हो, जन्म हो गया उसके बाद जाकर के केवली शुद्ध केवली के पादमूल में तीर्थंकर प्रकृति बांधी, दीक्षा ली तो दीक्षा कल्याणक हो गया, तो एक कल्याणक दीक्षा कल्याणक, फिर उसके बाद में ज्ञान कल्याणक, फिर उसके बाद निर्वाण कल्याणक, ऐसे 3 कल्याणक वाले भी होते हैं, 2 कल्याणक वाले, लेकिन भारत और ऐरावत क्षेत्र में नहीं होंगे, सिर्फ विदेश क्षेत्र में होंगे। ये हो गया तीर्थंकरों के बारे में। फिर तीर्थंकर की और विशेषताएं होती हैं। तीर्थकार्थ क्या होता है? तीर्थकार्थ होता है संसार से पार होने का उपाय, यानी घाट। तीर्थकार्थ है संसार से पार होने का उपाय, और तीर्थकर जो हमें संसार से पार होने का उपाय बताने वाला, वो तीर्थंकर होता है। या तीर्थ का दूसरा अर्थ होता है धर्म, और तीर्थंकरो तीति तीर्थ करा, जो तीर्थ अर्थात धर्म को करने वाले हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। ये तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ है। जिनके पंच करणक होते हैं वे तीर्थंकर हैं, या कि जो हमें संसार से पार होने का मार्ग बताते हैं, या धर्म की शुरुआत उन्हीं के द्वारा होती है। धर्म की शुरुआत तीर्थंकर से होती है, उसके पहले धर्म नहीं रहता, तीर्थंकर ही धर्म। ये वैसे तो अनादिकाल से धर्म चला आ रहा है, लेकिन लोगों को धर्म की प्ररूपना कौन करेगा, तो तीर्थंकर ही होगा। जैसे ऋषभदेव भगवान के पहले जो अवधि ज्ञान के द्वारा धर्म की जानकारी थी वो तो करते रहे, लेकिन सबसे पहले धर्म का उपदेश किसने दिया, तो ऋषभदेव भगवान ने दिया। ये इस तरह
से एक चीज है, पार्श्वनाथ भगवान हुए तो पार्श्वनाथ जी के बाद महावीर स्वामी हुए, तो जिस टाइम महावीर स्वामी जी का हुआ तो उससे पहले का धर्म रुक समाप्त हो गया था,
था उस समय गैप हो गया था, बीच में लोग भूल गए थे,
भूले होंगे।
परंपरा पार्श्वनाथ भगवान की चलती रही, उसमें लोग भूल गए, फिर से भगवान महावीर स्वामी हुए तो फिर से रिवाइज हुआ। अब ये जो काल चल रहा है भगवान महावीर स्वामी का काल कहलाएगा। एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच में धर्म प्रवर्तक कहलाते, तीर्थंकर को धर्म प्रवर्तक भी कहे, धर्म के करने वाले या धर्म प्रवर्तक, ये भी ठीक। तीर्थंकर माँ का दूध नहीं पीते, एक विशेषता, तीर्थंकर अपनी माँ का दूध नहीं पीते। देवो पनीत वहां से सब आता, बस खाते पीते भी नहीं अपने घर में कोई भी चीज, जब तक घर में रहेंगे सब देवों के द्वारा ही आएगा, तीर्थंकर की स्पेशलिटी। अंत तक उनके दाढ़ी मूछ नहीं होंगे तीर्थंकर के, हाँ ये सारी विशेषता। शलाका पुरुष सभी की, अकेले तीर्थंकर नहीं शलाका पुरुष की, कोई भी शरीर में से पसीना इस तरह का वेस्ट कुछ भी नहीं निकलेगा, आहार करेंगे लेकिन निहार नहीं होगा, ये विशेषता तीर्थंकर की। बचपन से ही अवधि ज्ञान लेकर के पैदा होंगे और दीक्षा लेते ही साथ मन परे ज्ञान और त्रेषठ रिद्धि के धारी हो जाएंगे, अमृत श्रावी रिद्धि हो जाएगी कि हाथ में जो बचपन से अवधि ज्ञान होता
नहीं, तीन ज्ञान धारी तो पैदा ही
तो हो ही गए, वही तीन ज्ञान, अवधि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान के धारी है मतलब मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान भी है, तो तीन ज्ञान के धारी होते। ये अपन लिख लेंगे, तुम लिखवा देंगे आपको, तो अभी तो सुन लीजिए। फिर उसके बाद आठ वर्ष में ही देश व्रत धारण कर लेते हैं, आठ वर्ष की उम्र में एक देशव्रती हो जाते, इलक शुल्लक के बराबर की पालन करने लगते। फिर नरक या देवगति से आते हैं तो वही गया, तीर्थंकर पर उपसर्ग नहीं होता, लेकिन हुंडाव सतमी काल था इसलिए तीन तीर्थंकर पर एक्सेप्शन है, तो उपसर्ग हुआ पर उपसर्ग नहीं होता। इनका रूप जो है वो अत्यंत सुंदर होता है और अनंत बल के धारी होते हैं, जन्म के 10 अतिशय और केवल ज्ञान होने के बाद 14 अतिशय और देवग्रस्त अतिशय, नहीं केवल ज्ञान के 10 और देवग्रस्त 14, ऐसे 34 अतिशय इनके होते हैं। ये अपन डिटेल में पूरा तीर्थंकर के बारे में इतनी जानकारी अपने, हमारे धर्म प्रवर्तक कैसे होते हैं, जिनसे हमें धर्म मिला है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये अपने को मालूम होने की, ताकि उनके प्रति अपनी श्रद्धा विशेष हो जाएगी कि ऑर्डिनरी आदमी नहीं है जिससे हमें धर्म मिला, विशिष्ट है, और उन्होंने पूर्व जीवन में किस तरह साधना की, किस तरह इस पद को प्राप्त किया, और एक आत्मा कैसे तीर्थंकर बनती है, ये तीर्थंकर के
बारे में। जैसे यदि
आपको लिखना हो तो
टाइम
जो है केवली शुभ केवली इनको भी अपन जो लेंगे वो सब इसके अंतर्गत आएगा पूरा, वो निकल केवली का अर्थ ही नहीं समझेंगे आप अभी, केवली शुभ केवली इनके रणबाजी अपन अगले बार जो है निहार मतलब मल इत्यादि मल मूत्र की बाधा नहीं होगी, नहीं होगा को बचपन से ही पसीना नहीं आएगा, कोई भी विकृति नहीं होगी, केवल ज्ञान के बाद, केवल ज्ञान के बाद नहीं बढ़ते
हैं,
नहीं नहीं आहार करते हैं, कबलाहार देवों के समान मानस आहार नहीं है कि कंठ में रखा हुआ है और जैसे इच्छा हुई और झर गया, नहीं इनको तो खाना पड़ेगा, लेकिन वो सब अमृत के रूप में ही होगा, बचपन से जो भी लेंगे वो सब अमृत के रूप में, ये विशेषता
होती है। तीर्थंकर के लिए आपने कहा कि वो आठ वर्ष की अवस्था में
तीर्थंकर अपनी माँ के लिए होते हैं, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि तीर्थंकर के पैदा होने के बाद माँ और पिता ब्रह्मचर्य ले लेते हैं
जी,
इसलिए तीर्थंकर अपनी माँ और पिता के एक ही होते हैं, ये ध्यान मोनोपल्ली चलती है, फर्स्ट चाइल्ड
फर्स्ट एंड लास्ट
एक ही होंगे।
जैसे वो छुल्ले
नहीं, तीर्थंकर के कोई नहीं होगा, तीर्थंकर के बेटियां नहीं उत्पन्न होती, तीर्थंकर के सिर्फ पुत्र उत्पन्न होंगे, ये भी चीज है आदिनाथ का एक्सेप्शन। एक मिनट, हाँ अतिशय मतलब सामान्य व्यक्ति से कुछ विशेषताएं जो सामान्य व्यक्ति को नहीं होती वो कहलाती अतिशय। देवो पनीत या कि सहज स्वभाव से प्राप्त, जन्म के साथ ही जिनको प्राप्त हुए हैं, ऐसी चीजें जिन जो चमत्कृत करती हैं लोगों को, अतिशय मतलब चमत्कार। ये
प्रश्न था कि शंकर जो हुआ बताया लोग खिल्लक खिल्लक के बोस में लेगा जरा प्रतिभाधारी होगा
क्या आपस में चर्चा कर रहे हैं लोग बताइए कैसे करें
तो नहीं भाई
इसलिए तो करें आपस में बात अगर आपको जानकारी है तो ठीक है अपने पास रखिएगा बाहर चर्चा कर लीजिएगा यहाँ तो हम बुद्धू बन के पढ़ा रहे हैं जो सब चीजें हम छोड़ चुके हैं वो बुद्धू बन के पढ़ा रहे हैं पहली क्लास के लिए बताइएगा इतनी छोटी छोटी चीजें जिनमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे तो काम छोड़ करके मैं अपना दूसरी ये सब कर रहा हूँ उसमें ही आप
हम लोगों के लिए
पहली बार है पहली बात है कि तब पहली क्लास ब्रह्मचारी पढ़ाता है मेरा जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ
तो महाराजी हम पे अनुकंपा है
मत करिएगा बिल्कुल भी आपको जानकारी है तो अपने पास रखिएगा मुझे भी जानकारी किताबें बहुत रखनी लेकिन मुझे बतानी छोटी छोटी हल्की सी चीज बतानी बड़ी बड़ी पता पकड़ा दूंगा आप श्रुत केवली केवली वो कह रहे पहले ये तो बताओ श्रुत केवली केवली फिर आप बताना कि कैसे तीर्थंकर प्रकृति बनती तो इनकी छोटी छोटी सी चांस बतानी इसलिए जिसके पास ज्यादा ज्ञान है वो थोड़ा सा अभी उसको अपने पास रखे।
हाँ पूछा था जैसे आपने बताया कि तीर्थंकर के ग्यारह ये प्रतिमाधारी रहते हैं छिड़े पहले की तरह से तो उसमें तो
प्रतिमाधारी नहीं देशव्रती
देशव्रती होते हैं। हाँ।
देशव्रत जैसे छुल्ला केलक का देशव्रत है उनका भी देशव्रत कहलाता है उसी तरह इनके भी देशव्रत हो जाते हैं। अभक्ष का तो उनका बचपन से ही वैसे तो लिखा हुआ है कि बचपन से ही देशव्रति के समान होते हैं पर संकल्प पूर्वक तो देशव्रति आठवें आठ वर्ष में होते हैं क्योंकि आठ वर्ष के पहले किसी को भी सामान्य व्यक्ति को सम्यक दर्शन और ज्ञान और चारित्र नहीं होता पर केवली भगवान तो सम्यक दर्शन के साथ ही पैदा होते हैं इसलिए अपन तीर्थंकर की जयंती मनाते हैं सामान्य किसी की जयंती नहीं मनाते क्योंकि सामान्य कोई पुरुष यहाँ पैदा होगा पंचम काल में मिथ्यात्व के साथ पैदा होगा इसलिए अगर आप उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं तो आपने मिथ्यात्व का सेलिब्रेशन किया है। आप उसके दीक्षा को मनाइए जिस दिन उसने सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त किया और आप भी अपने जिस दिन आप व्रत लें कोई छोटा सा उस दिन को सेलिब्रेट करिएगा कि हाँ ये हमारा सेलिब्रेशन का दिन है आज हमने व्रत लिया है तो इसको हमेशा हर साल हम मनाएंगे इसको जन्म दिवस की तरह अपने जन्म दिवस जो मनाते हैं उसको चेंज करिएगा या फिर जन्म दिवस के दिन अपने बेटे को नियम दिलवा दीजिए कि बेटे सप्त व्यसन का त्याग अवक्ष का त्याग ये नियम ले लो ताकि हम हर साल इसी दिन तुम्हारे इसकी वर्षी मनाएंगे कि तुमने व्रत लिए जन्मदिन के तो दोनों चीजें किस तरह का
सलाका पुरुष में जो शामिल है बारह चक्रवर्ती अपने आप बोला सलाका पुरुष जो होते हैं
हाँ मैं दोनों अब तद्भव मोक्षगामी भी होते हैं ये कहा मैंने शलाका पुरुष सब तद्भव मोक्षगामी होते ये नहीं कहा जो शलाका पुरुष हैं उसमें से मोक्षगामी भी होते हैं ये मैं आप ध्यान रखिएगा इस चीज को नरक तो नारायण तो नरक ही जाएंगे बलदेव और चक्रवर्ती कथनचित स्वर्ग भी जाएंगे और मोक्ष भी जाएंगे लेकिन तीर्थंकर सब मोक्ष जाएंगे
तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के बाद नरक तो वो नरक में सामान्य
नारकी के जैसे रहते हैं आखिरी के छह महीने में विशेषता हो जाती फिर वज्र कपाट लग जाते हैं और उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता वे आत्मा का चिंतन करते हैं छह महीने शेष रह जाने पर आयु के लेकिन बाकी समय मारी थाली चलेगी सब तीर्थंकर प्रकृति की बात
तीर्थंकर की शादी होती लेकिन
बिटिया थी दोनों ये एक्सेप्शन है आदिनाथ भगवान की बिटिया एक्सेप्शन और क्यों नहीं होती बिटिया बुरी नहीं है लेकिन सवाल ये है कि तीर्थंकर को झुकना पड़ेगा दोनों पुत्रियों ने यही पूछा था कि पिता मेरे आपसे बड़ा कोई है क्या बोले हाँ मेरे से भी बड़ा कोई है जिससे तुम्हारा विवाह होगा उसके मुझे झुकना पड़ेगा उन्होंने कहा अरे तो फिर हम विवाह ही नहीं करेंगे जिससे आपको झुकना पड़ेगा ये एक्चुअली उनको टॉप पे रखना है ना तीन लोग के स्वामी हैं इसलिए उनको कहीं झुकना नहीं पड़े इसकी व्यवस्था है इस दृष्टि से लीजिएगा ठीक ये इंटरेस्टिंग है इसमें बहुत सारी जानकारी आवश्यक है जिन जिनके द्वारा हमें धर्म मिला है उनके बारे में जानकारी आवश्यक है ठीक लिख लेंगे फिर अगले बार में। Thank you.